मोनालिसा के इरादे। फिलहाल ध्रुव ने अरमान को जो इंजेक्शन दिया था उसके असर से वो 2 से 3 घंटे तक बेहोश रहने वाला था। तब तक उसका तांत्रिक से इलाज करवाना था ताकि होश में आने पर अरमान किसी तरह का कोई हंगामा ना करे। अब आगे आहान बेसब्री से इधर उधर टहल रहा था और आस्था नानी माँ के साथ अपना मुंह लटकाए अंश को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। वो अपने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे अंश के मासूम चेहरे को एक टक देख रही थी। आस्था को अब बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने पति और अंश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उसे अब सब कुछ बदलता नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी नानी माँ आहान को यहाँ वहाँ टहलते हुए देखकर इरिटेट होकर बोली, अरे आहान बिटवा, तूने सचमुच किसी को बुलाया भी है या नहीं? अगर दामाद जी जाग गए और ध्रुव बिटवा के इंजेक्शन का असर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या तुझे लगता है कि वो इलाज करवा पाएंगे? और अगर वो पिशाच बनाकर पूरे मेंशन में हमें घुमाने लगे तो कुछ सोचो इस बारे में। नानी माँ की इस बात पर ध्रुव भी जल्दी से आहान के पास गया और तंज भरी नज़रों से उसे देख कर बोला, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे पता है कोई काम तुमसे हो ही नहीं सकता। अगर तुझे किसी को बुलाना ही था तो खुद जाकर भी तो लेकर आ सकता था ना, सिक्योरिटी से किसी को भेजकर बुला सकता था। उसके मुंह से ये सवाल सुनकर आहान ने गहरी सांस ली और अनमने ढंग से बोला, मैंने कहा ना, मैंने वाकई किसी को बुलाया है। उसके इतना कहते ही अचानक बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सब लोग दरवाजे की ओर एकदम से देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक औरत काले कपड़ों में, माथे पर बड़ा सा कुमकुम लगाए, हाथ में मोतियों की माला लिए, पीछे 4 से 5 धोती कुर्ता पहने आदमी के साथ अंदर आ रही हैं। उस औरत को देखते ही नानी माँ अगले ही पल श्रद्धा से डूब गईं। वो तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और परेशान होकर बोली, देवी जी, आप तो साक्षात देवी हो, अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। हमारे दामाद जी तो किसी ने अपने वश में कर लिया है, हमारी मदद करो। नानी माँ के उन शब्दों ने सबकी कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। सुमित और रश्मि समेत बाकी सभी को ये सब अटपटा सा लग रहा था, लेकिन अरमान का बदला हुआ व्यवहार देखकर वे चुप रहे। तब वो औरत अहंकार से बोली, देखिए, हमें सब कुछ साफ साफ बताइए जो कुछ भी उस इंसान ने किया है। अब देर न करते हुए नानी माँ ने अरमान की यादों को लेकर और जो कुछ भी वो अटपटी हरकतें कर रहा था वो सब कुछ उस लेडी तांत्रिक मोनालिसा को बता दिया था। अरमान के बारे में ये सब जानकर वो कड़क अंदाज में बोली, आप हमें उसके पास लेकर चलिए। फिर देर ना करते हुए सब लोग उस तांत्रिक को लेकर अरमान सिंघानिया के कमरे में जाने लगे। मोनालिसा ध्यान से पूरे सिंघानिया मेंशन को टकटकी लगाए देखने लगी। ये बहुत बड़ा घर था जहां उसे पहली बार आने का मौका मिला था। वेल, तभी आस्था ने बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल करके अरमान के कमरे का दरवाज़ा खोला और तभी मोनालिसा ठाट से अंदर आई और जैसे उसने अरमान को वहां बेहोश लेटे हुए देखा तो मोनालिसा की नज़रें साफ तौर पर ठिठक गईं और उसके हाथ पैर डर के मारे फूल गए थे, क्योंकि वो अरमान सिंघानिया को पहले से जानती थी। असल में ये तांत्रिक किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी ठग थी। उसने ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया था। एक बार वो अरमान सिंघानिया को भी अपना निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन अरमान ने अपनी बंदूक की नोक तुरंत उसके सिर पर रख दी थी और उसे ठंडी आवाज़ में धमकाया था। अरमान सिंघानिया को पागल बनाना इतना भी आसान नहीं है। उस दिन के बाद से मोनालिसा ने अरमान तो दूर किसी और को भी ठगने की हिम्मत नहीं की। अरमान का नाम उसके दिलो दिमाग पर छप गया था, लेकिन वक्त के साथ उसने पैसे कमाने का नया रास्ता ढूंढ लिया, लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खेलना। वो भूत भगाने वाली तांत्रिक बन गई और उसे नाम के साथ दौलत भी खूब मिल रही थी। लेकिन आज अरमान को अपने सामने देखकर उसके हाथ पैर थरथराने लगे। फिर जब उसे नानी पासे कही गई बात याद आई कि अरमान को कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त जा चुकी है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसने अगले ही पल सोचा, चलो अब जब इसकी यादें नहीं है तो इसके साथ अच्छे से खिलवाड़ किया जा सकता है। आस्था का ध्यान लगातार मोनालिसा पर था। उसका दिल किसी अनकहे डर से भरा हुआ था। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि ये औरत अरमान को इतने अजीब तरह क्यों देख रही है। फिर उसने शांत मन से सोचा, शायद ही अपने तंत्र मंत्र से अरमान को ठीक दे। वेल, धीरे धीरे मोनालिसा ने अरमान के चारों ओर नींबू रख दिए और सब लोगों से कठोरता से बोली, अब आप सबको अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करना होगा, फिर देखना इनके अंदर का पिशाच कैसे भागता है। इनके अंदर ऐसा प्रेत बैठा है जो इनकी जान तक ले सकता है। जैसे ही ये शब्द मोनालिसा के मुंह से निकले वैसे ही सब लोग एकदम से घबरा गए। तब नानी माँ मोनालिसा से रोते हुए बोलती है, ओझा जी, जो भी करना है कीजिए, लेकिन हमारे दामाद जी को ठीक कर दीजिए, हम उन्हें इस हालत में नहीं देख सकते। उनकी इस बात पर मोनालिसा हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नानी माँ की तरफ गहरी नजरों से देखकर बोली, देखिए, हमें इनके लिए कुछ स्पेशल हवन करना होगा, वो भी इनके कमरे में,
और जैसे कि आप लोगों ने बताया कि कुछ देर बाद ये उठ जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये उठेंगे तब ये बिल्कुल सही सलामत उठेंगे और सब लोगों के साथ प्रेम से पेश आएंगे। मोनालिसा के ये शब्द सुनकर कहीं ना कहीं नानी माँ तो पूरी तरह से श्रद्धा में डूब गईं और जल्दी से हाथों को जोड़कर अनामिका के गोल गोल चक्कर काटते हुए बोली, आप महान हैं, आप महान हैं, आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे दामाद जी बस पूरी तरह से ठीक हो जाएं, उन्हें बिल्कुल भी परेशानी ना हो और वो सबके साथ एक बार फिर से प्रेम से रहने लगें। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक कर देंगे। अब नानी माँ को इतनी श्रद्धा में डूबा हुआ देखकर मोनालिसा और भी ज्यादा शेर हो गई और वो एकदम से गहरी आवाज में बोली, देखिए अभी आप लोगों को हमें इनके साथ अकेला छोड़ना होगा। तब आस्था घबराहट में फट से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह से अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। आस्था की इस बात पर मोनालिसा मुस्कुराते हुए बोली, देखिए आपको हम पर भरोसा करना होगा, यहाँ पर केवल हम और हमारे साथ ये काम करने वाले हमारे सहायक ही रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टर सिंघानिया के अंदर का पिशाच एकदम से बाहर आ जाए और वो घर के किसी भी सदस्य पर हमला कर सकता है या फिर किसी को भी अपना निशाना बना सकता है, इसीलिए हमें अकेले में ही इनका इलाज करना होगा। मोनालिसा की ये बात कहीं ना कहीं सभी को ठीक लगी, इसीलिए सभी एक एक करके वहां से बाहर जाने लगते हैं। नानी माँ भी तुरंत आस्था को लेकर बाहर जाने लगी। वहीं अभिमान जी ने केवल एक पल के लिए शांत नजरों से अपने बेटे को देखा, फिर वो भी फिर वहां से बाहर निकल गए थे। और जैसे ही वो सब लोग हॉल में नीचे आए तब मोनालिसा एक बार फिर उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई थी और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, देखिए अभी हम एक घंटे तक एक बहुत कड़ी प्रक्रियाएं करेंगे, फिलहाल तब तक आप सब एक साथ यहीं बैठे रहेंगे। इस बीच अगर आपके कमरे से कोई भी आवाज सुनाई दे तो आप में से कोई भी हमें इंटरप्ट नहीं करेगा, समझे आप लोग? अगर आप लोग चाहते हैं कि मिस्टर सिंघानिया पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तो आपको हमारी बात माननी ही होगी। उसकी इस बात पर सभी लोगों ने हामी भरी, लेकिन आस्था का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो इस तरह से अरमान को भला अकेला कैसे छोड़ सकती थी।
तभी नानी माँ ने आस्था धीमी आवाज में समझाते हुए कहा, बेटा शांत हो जा, बस कुछ देर की तो बात है, फिर देख क्या पता दामाद जी तुझे याद करने लगे और सब कुछ ठीक हो जाए, और जो वो चुड़ैल कल मूवी एक बार फिर तेरी जिंदगी में आई है, फिर देखना दामाद जी कैसे उसे सीधा करते हैं। कहीं ना कहीं नानी माँ का इशारा पूरी तरह से सजना पर था। फिलहाल अब नानी माँ की इस बात पर आस्था भी शांत हो गई और सबके सब हॉल में बैठ गए थे। वहीं रौनक, जिसे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने की आदत थी, उसे एक बात फिर जोरों से भूख लग रही थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इस सिचुएशन में वो लोगों को कैसे बोले कि उसे भूख लग रही है। लेकिन नानी माँ उसके चेहरे की बेचैनी देख चुकी थी कि कैसे रौनक बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। तब नानी माँ रौनक को देखते हुए एकदम पूछती हैं, क्या बात है, क्या तुम्हें भूख लगी है? उनके मुंह से ये सवाल सुनकर रौनक ने मासूम सी शक्ल बनाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब नानी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा घर में जो कुछ हो रहा है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन बेटा तुम इस तरह से भूखा रहकर खुद को और अपने बच्चों को सजा नहीं दे सकती हो। रुको, अभी हम तुम्हारे लिए वसुंधरा से कहकर कुछ बनवाते हैं। इतना बोलने के बाद नानी माँ ने थोड़ा सख्त अंदाज में आवाज लगाई, वसुंधरा, वसुंधरा कहाँ मर गई हो तुम, इधर आओ। अब जैसे ही नानी माँ ने वसुंधरा को आवाज लगाई तब वसुंधरा अपने राजसी ठाट बाट में वहां आ पहुंचती है। उस वक्त वो अपनी हैवी ज्वेलरी पहने और अच्छे से साड़ी कैरी किए हुए वहां सबके सामने मौजूद थी। अब वसुंधरा को यूं सजा हुआ देखकर नानी माँ पूरी तरह से शॉक हो गई थी। वहीं सब लड़कियां और लड़के, इतना ही नहीं दादाजी स्पेशली आंखें फाड़कर वसुंधरा को अनमने ढंग से देखने लगते हैं कि अचानक से ये नौकरानी के रूप से महारानी के रूप में कैसे आ गई। तभी अभिमान जी वसुंधरा को गुस्से में देखकर तमतमाते हुए बोले, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम इस घर की नौकरानी हो, महारानी नहीं हो कहीं की, जो इस तरह से सज धज कर यहां पर आई हो। अब अभिमान के मुंह से ये शब्द सुनकर वसुंधरा के तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन वो खुद के इमोशंस शांत करके बोली, क्यों, तुम्हें मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, और अगर मैं महारानी नहीं हूं तो बहुत जल्द बन भी जाऊंगी। अब वसुंधरा का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर अभिमान के सीने में गुस्सा भड़क उठा। वहीं दादाजी तुरंत ही वसुंधरा के सामने जाकर खड़े हो गए और रूखेपन से बोले, ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? और मान ने तुम्हें प्यार से एक बार गले से क्या लगा लिया और थोड़ी बहुत बातें क्या कर ली, तो क्या तुम्हें वाकई लगने लगा है कि अरमान ने तुम्हें माफ कर दिया है? हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अरमान के साथ कुछ तो गलत है, या फिर उस वायरस का उस पर कुछ गलत असर हुआ है जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ इस तरह से बात कर बैठा। लेकिन ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि अरमान को तुम्हारे वजूद से भी नफरत है। दादाजी के कड़वे शब्द सुनकर वसुंधरा को कोई गुस्सा नहीं आया था। उसने दादाजी को बड़ी ही शांति से जवाब देते हुए कहा, देखिए अब अरमान ने मुझे माफ किया है या ना किया है, इस बात से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल ये बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है।